ओम शांति। आप बड़े भाग्यवान हैं जो अव्यक्त मास में मधुबन में भट्टी करने के लिए पहुंचे हैं। आप पद्म पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं संसार के हालात। समय विदाई ले रहा है और हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को भी अब विदाई देनी है और जरूर देनी है, नहीं तो जो हम सब के सपने हैं बाप समान बनने के, वो अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा ब्राह्मण परिवार में कहें, ब्राह्मण जीवन में कहें, कि विघ्न आता है तो व्यर्थ का आता है, और इस व्यर्थ से मुक्त जब तक नहीं होंगे आप समर्थ कार्य कर नहीं सकते। तो व्यर्थ से मुक्त होने की समय प्रति समय बाबा ने हम सब बच्चों को विधि बताई है कि बच्चे जो कुछ भी हो रहा है ये नथिंग न्यू, और बच्चे बिंदी लगाओ, और अमृत वेले उठते ही अगर आप ये अभ्यास करेंगे कि मुझे तीन बिंदी लगानी है, और बार बार अटेंशन देंगे, रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, तो आप व्यर्थ से मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो कहना बहुत सहज है, प्रैक्टिकल करना, बिंदी लगाना, पसीना आ जाता है, इतना सहज है क्या? लेकिन उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो जब तक हम लीकेज बंद नहीं करेंगे, चाहे आप अमृत वेले 2 बजे उठो, पूरा जनवरी मास पूरा जी जान लगा के कम खाना खाओ, खूब योग करो, व्यर्थ है तो आपका की कमाई जो जमा किया वो सारा बह जाएगा। फिर ठंडी में इतना मेहनत करके इतनी तपस्या करने के लिए निकले और व्यर्थ को बंद नहीं किया तो पूरा कैसा क्या होगा, पूरा व्यर्थ चला जाएगा। वैसे भी देखो, आप कुछ भी अगर एक टंकी है पानी भर दो और टूटी को बंद नहीं करो तो क्या होगा, चाहे सारी रात मोटर चलती रहे और खाली रहेंगी टंकी, रहेंगी ना। तो इसलिए अटेंशन क्या देना, पहले अपनी व्यर्थ की जो टूटी है उसको बंद करना है, फिर आप देखो ऐसे उड़ोगे उमंग उत्साह में कि सब कहेंगे क्या हो गया आपको, आजकल तो बहुत खुश मौज में रहते हो। आज भी बाबा ने कितना कहा, ब्राह्मण जीवन में ना ही संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना। तो जब ये टूटी बंद नहीं होंगी तो समझ लो सपने ही देखो फिर खुश रहने के, नहीं ये बहुत जरूरी है। इसलिए अंडरलाइन ये कर लो आज से, क्योंकि आप सब इतना समय निकाल के प्यारे बाबा के घर में तपस्या के लिए निकले हैं, तो कुछ करके जाओ और ब्रह्मा बाप समान बनने का ये मास है। तो ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को संपूर्ण बन गए ना, सिर्फ 33 साल में, और 5 बच्चों के बाप गृहस्थ, इतना बड़ा कारोबार आप सबको पता है कितना था, सब समेट दिया और श्री कृष्ण के पद को हासिल कर लिया, किया या नहीं किया 33 साल में। लेकिन वो कैसे हुआ, कि बाबा ने, खुद शिव बाबा ने उनको दो साक्षात्कार कराए। कौन से? एक साक्षात्कार कौन सा कराए? एक विनाश का, दूसरा स्थापना का, कि ऐसी दुनिया बनानी है, कराया ना। इन दो साक्षात्कार ने ब्रह्मा बाबा का पूरा इतिहास ही बदल दिया। बदला कि नहीं? और हम सबके आइडियल बन गए, फॉलो फादर। लेकिन बाबा, देखो शास्त्रों में भी तो देखो, 18 गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है ना। तो बाबा भी 18 जनवरी को संपूर्ण बन गए, नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। तो फॉलो फादर करना तो सहज है ना, या मुश्किल है? तो जब तक हम फॉलो फादर के सब कुछ देखते हुए भी हम दो बातें पक्की कर लें और कुछ ना करो, अगर आपने व्यर्थ से मुक्त होना है तो, एक तो कि ये दुनिया जाने वाली है, और थोड़े लक्षण तो आप सबको अनुभव करा ही दिए इस साल में जो बीता, कि अब घर जाना है। घर जाना है तो ये सब जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब खत्म होने वाला है, भस्मीभूत होने वाला है। ये कब्रिस्तान है, इससे क्या दिल लगाएंगे? ये भूतों की दुनिया है, ये सारी दुनिया बारूद के ढेर पर है, कभी ना जाने कुछ भी हो सकता है। बाबा ने तो कितना कहा, बच्चे ग्रह युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, फिर अर्थक्वेक होंगी, ये सब हमारे लिए सहयोगी साथी बनेंगे, सफाई करेंगे। हम नई दुनिया में जाएंगे तो ये सब कुछ तो पहले होना ही है, तभी तो आप सब नई दुनिया में कदम रख सकेंगे। तो इस दुनिया से इतना वैराग आ जाए कि अब तो घर जाना है, और फिर कहाँ आना है? नई दुनिया में आना है, जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी आपके हाथ में है, स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की तकदीर की लकीर खींचने की कलम आप बच्चों के हाथ में दे दी है, कि जितना भाग्य बनाना चाहो बना लो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, किसी जन्म भी, किसी युग में भी। तो अभी हम बच्चों के लिए बड़ा सुंदर समय है, बाबा साथ दे रहा है, समय साथ दे रहा है आप सबकी पालना के लिए। कितने भाई बहन सब आके आप सबको कितनी पावर भर रहे हैं ना, उसका रिटर्न क्या देंगे? कि बाप समान बन के ही जाना है, तो अब घर जाने का टाइम है, अब क्या यहां दिल लगाएंगे? दिल लगा के तो देख लिया ना, सबने दिल तोड़ा ही है या दिल जोड़ा है? है, अब बाबा से दिल जोड़ लो, अब घर जाना है। तो समय बड़ा बदल रहा है, इसलिए अब हमें अपने को बदलना है। बाबा ने तो कितनी बार कहा, बच्चे अचानक और एवर रेडी, ये दो शब्द पक्के करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना एवर रेडी रहो, चारों तरफ से अपनी बुद्धि का लंगर छूटा हुआ हो, टूटा हुआ हो, बस एक बाप दूसरा ना कोई। उसके लिए बाबा ने कितना हम बच्चों को कहा, बच्चे सर्विस करो, क्योंकि खाली मन कहते ना शैतान का घर है, कैसा बोलते हैं ना, तो मन को खाली छोड़ो ही नहीं, इसको सर्विस में बिजी रखो। और सर्विस करना बहुत जरूरी है ब्राह्मणों के लिए, नहीं तो आप, बाबा कितनी बार कहता है, बच्चे प्रजा बनेंगे, राजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे? सब हाथ कहां उठाते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो सेवा तो करना है ना। सेवा करेंगे किसके ऊपर? पहले प्रजा तो चाहिए, राजा बनना है सेवा करेंगे तो प्रजा तो चाहिए। और प्रजा से पहले भी, क्यों, संगम पे तो ठीक है जो कुमार हैं कुमारी हैं परिवार वाले हैं अपने संबंधों में बंधे हुए हैं, लेकिन सतयुग में तो एक बीबी भी चाहिए, दो बच्चे भी चाहिए, तीन तो चाहिए ना, या वहां भी अकेले रहेंगे? वहां तो तीन चाहिए ना, लेकिन उसके लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, क्योंकि आप सोचो कि आपके 84वां जन्म तो हमारा अभी है, लेकिन 83 जन्म तो होंगे ना। 83 जन्म में तीन, चलो दो बच्चे और एक बीबी, तीन है तो 83 तो ये कितना होता है, 249। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, हंसी आ रही यार सबको। अच्छा 249, 249 हो गए ना, तो 249 तो आपको ऐसे वारिश चाहिए कि जो आपके साथ रहे, फेथफुल हों, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसी सेवा की है जो 249 आपको साथ, स्वभाव संस्कार मिले, प्यार हो। और फिर प्लस प्रजा भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रजा, और वो भी वफादार चाहिए, फिर दास दासी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो तभी तो आप सब क्या राजा महाराजा बन सकेंगे कि नहीं? तो ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं ना। सिर्फ कह दे जी हम तो महाराजा बनेंगे, अरे भाई प्रजा बनाई, अपने जैसे बनाए, जो बाबा कहते हैं जी आप समान ही नहीं बनाए तो बाबा कहते किसी काम के नहीं, बोलता ना बाबा। तो आप ये बहुत गहरी बातें हैं कि 249 तो ऐसे फेथफुल होने चाहिए जो आपके सतयुग से लेके लास्ट तक साथ रहें, फेथफुल हों। अगर अभी आपने ऐसे स्वभाव संस्कारों की रास नहीं की तो आप देख लेना, कोई द्वापर में किसकी बीबी मर जाएंगी, किसी का बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसने पूरे संगम पे क्योंकि उसने इसी संगम ही आधार है ना पूरे कल्प का। तो इस संगम पे हम बच्चों को बाबा ने सारा ज्ञान दिया है नहीं दिया, तो पूरे कल्प की रील अभी आपकी सारी शूट हो रही है। आपको अभी देख लेना है कि आगे हमने कैसा जन्म लेना है, कैसी प्रजा होंगी, कैसे बच्चे होंगे, कैसी बीबी होंगी। नहीं अभी स्वभाव संस्कार नहीं मिला है तो छोड़ के तलाक दे के भी द्वापर में चली जाएंगी। ये होगा, ये ऐसे थोड़ा हिसाब है ना, कई राजे महाराजाओं को संतान भी नहीं होती है, तो कारण क्या है? तो संगम पे बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की बड़ी गुह्य गति का ज्ञान दिया है, उसके लिए जी भर के अभी आप सेवा कर लो और अपना पूरे कल्प का सुंदर भाग्य बना लो। अभी हमारे हाथ में है, फिर हम सब समय के हाथ में चले जाएंगे। तो ये तो हुआ, अपनी सेवा करोगे तो मेवा मिलना है और बीजी रहोगे, तभी तो व्यर्थ से मुक्त होंगे। तो अभी देखो जी, उमंग उत्साह, ब्राह्मण जीवन में अगर उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है। अरे भाई हमारे को साथ देने के लिए कौन आया है? हैं? बाबा है। देखो मैं आपको अपने जीवन की कुछ कहानियां सुनाता हूं, प्रैक्टिकल जो बातें जो आपके जीवन में भी काम आए। हैं? क्लासें तो आप सबने बहुत सुनी और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए सेवा ही तो करनी है, तो व्यर्थ से मुक्त होंगे तो कैसे कैसे बाबा सेवा अपने बच्चों से करवाता है, जो मेरे अंदर इतना वो है कि बाबा सब काम खुद ही करता है और सामने बच्चों को लाता है। तो अभी एक बार क्या हुआ, यहां हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी, यहां मीटिंग था हमारे निवासियों का दिवाली के निमित्त, कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबकी राय सलाह से करते हैं, तो सबकी राय ली गई तो मेरे को भी एक संकल्प आया, तो मैंने भी कहा कि दीदी जी हाथी लाएंगे, उस पे दादियों को बिठाएंगे, घोड़े लाएंगे और यज्ञ के इतिहास में ऐसी दिवाली हो जो एक नया इतिहास रच देंगे। तो सब जैसे हंस रहे थे, खुश होते हैं, तो फिर बोले ठीक है, भले जिसका जो करना है राय अच्छा है लेकिन खर्चा कम करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही बाहर जब पूरा मीटिंग हुआ, मैं बाबा कमरे में गया, कई भाइयों ने कहा कि हरीश भाई हाथी कब आ रहा है, तो मैं और गंभीर हो गया, मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा आज तो मैं फंस गया कि मैंने मीटिंग में बोल तो दिया लेकिन खर्चा जो होगा वो भी कहाँ से आएगा, और बाबा आप ये काम तो करो। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, ठीक है बाबा करेगा, लेकिन क्योंकि ये कहानी है मैं सुनाऊंगा दो चार कि इसके पीछे कैसे सफलता मिली और कैसे बाबा अपना कार्य कर खुद ही करता है, तो उसके लिए हमें किन बातों की बहुत जरूरत है उस पर हम अटल रहे। तो ऐसे करके तो बस गया बाबा कमरे में, बाबा को बोला, तो मेरे पास 12,000 रुपया पड़ा था, मैंने वो जेब में डाल लिया और गाड़ी उठाई, या हाथी का पता करने लगा, हाथी माउंट में तो है नहीं, तो नीचे गया पूछा, कोई बोला पावापुरी के पास एक महात्मा के पास है, मैं वहां गया देखा हाथी था, तो बड़ा खुश हुआ मैं, बाबा आज मैं भोजन भी तब करूंगा जब तक मैं हाथी का कुछ फाइनल नहीं कर लूं। तो बस गया बाबा के प्यार में खोया हुआ, गया तो जाते हाथी देखा, बड़ा खुश हुआ मैं, फिर उसके महात्मा को मिला जो मालिक था उसका, वो बोला जी, मैंने कहा जी हाथी माउंट आबू में दिवाली पे चाहिए, ऐसा ऐसा है, कहता जी 51,000 रुपये लूंगा, भेज दूंगा। अब मैंने सोचा 51,000, तो मैं बाबा को याद किया, बाबा आप कहते हो भोले बच्चों के तन में आके अपना काम कर लेता हूँ, मैं कहा आज आ जाओ थोड़ी देर, इसकी बुद्धि ठीक कर दो कि भाई 51,000 रुपया कौन देगा तो बस बाबा को याद करके करते करते वो 21 पे आया। फिर मैंने कहा महात्मा जी आपका तो वहां ऊपर माउंट में बड़े सेठ लोग रहते हैं, ये तो संस्था है और आपके हाथी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी और आप ठीक पैसे ले लो और आपका वहां बहुत काम होगा, तो आपको वहां से बहुत पैसा मिलेगा आगे के लिए। तो फिर करते करते जी 13,000 में वो फाइनल हुआ, तो यहाँ हाथी आ गया। हाथी आया तो हमारे ज्ञान सरोवर के काफी भाइयों ने उमंग उत्साह से उसको सजाया और फिर उसके ऊपर बैस ये था कि दादियां बैठे, तो यहाँ लाए तो पूरा एक क्विंटल फूल लाए उसका, हमारे महावीर भाई, आनंद भाई सब ने बड़ी मेहनत करके उसके ऊपर ना वो कुर्सी और वो उस रात भर लग के सब प्लेटफार्म ये सब किया। तो उसके बाद बाबा को कहा बाबा अब दादियां बैठनी चाहिए, हाथी तो आ गया है। तो उसके बाद वंडर ये कि जैसे मैसेज आने लग गए कि दादियां हाथी पे नहीं बैठेंगी, गिनती की दादियां हैं, मैं कहा गिनती की दादियां हैं तो हाथी क्या करेंगे भाई। तो फिर जैसे टाइम नजदीक आया और सजा दिया सब, फिर बाबा बोले पहले बच्चे इनकी ब्राह्मणियों को बिठा हाथी पे, तो फिर हंसा बहन झंडा लेके हाथी पे और पूरे ज्ञान सरोवर में बड़ी एक रौनक सी लग गई। फिर दोनों दादियां, गुलजार दादी जी, दादी जानकी जी अपने पीस कॉटेज में थे, अपने इसमें दादी कॉटेज में। तो यहाँ हाथी लेके आ गए तो बस दोनों दादियां बाहर आई, उसके माथे पे हाथ घुमाया, केला खिलाया और बहुत ही दादियां बड़ी खुश हुई कि भाई हाथी आ गया। लेकिन करा तो बाबा अपना काम रहा था, तो वहां दादियां बोली हम हाथी पे बैठेंगी। तो मैंने कहा चलो आधा काम तो हो गया। तो उसके बाद फिर जैसे शाम हुई फिर हमारे डेनिस बहन को बोले झंडा लेके भाई ये हाथी पे बैठेंगी, दादियां नहीं बैठेंगी। तो फिर मैं वहां किचन स्टोर में खूब दिन रात मेहनत तो करनी पड़ती है, सभी कर रहे थे भाई ज्ञान सरोवर वाले। तो फिर 15 हम घोड़े लाए, फटाके लाए, बैंड बाजे लाए, पूरा सजा दिया यहाँ, और बड़ा मतलब एक अलग ही वो दिन था। तो जैसे शाम हुआ तो हमने कहा बाबा अब दादियां बैठे, फिर प्रोग्राम ये आ गया जी अब दादियां नहीं बैठेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है। तो मेरे को भी थोड़ा माथा भारी हुआ, मैंने कहा भाई जो कल पहले अगर मक्खी उड़ी है तो बाबा कहता अब भी उड़ेगी, तो इसमें क्या है, अगर कल पहले दादियां बैठी होंगी तो अब भी बैठेंगी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो के दादियों को नहीं बिठा। तो फिर बोले कि सेफ्टी नहीं है, फिर मैंने कह दिया कि सेफ्टी तो हमारी बाबा है, बाबा ही सब सेफ रखेगा, मगर जब दादियां एरोप्लेन में जाती हैं देश विदेश कुछ हो जाए है तो उससे ज्यादा सेफ तो मैं कह यहां है हाथी में है। तो तो फिर वो बोले तेरे से माथा कौन मारे यार, तू जो करना कर। तो मैं फिर और बाबा को याद किया, मैं बाबा आज दादियों को बिठा दो बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही ना फिर पांडव भवन से दादियां निकली तो सब वहां कारपेंटरी है ना बाहर, वहां हाथी खड़ा कर दिया, वो प्लेटफार्म बना दिया। तो डेनिस बहन तो झंडा लेके खड़ी थी, मैं भी कहा अभी किसी को बड़े को कहना ठीक नहीं है, तो अब बाबा को ही बोल जो हो सकता है, तो नहीं तो बस जो ड्रामा होगा। मैं बाबा को बस वतन में गया, बाबा अभी आप ही करो कुछ, बस दादियों को बिठा दो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप कमाल है, जैसे दादियां आई ना कारपेंटरी के पास, गाड़ियां रुकी, दोनों दादियां आके हाथी पे, गुलजार दादी, दादी जानकी जी हाथी पे बैठ गई। तो बैठ गई तो हम उधर ही खड़े थे, ऊपर हमारे आनंद भाई भी बैठे हाथी पे। उसके बाद तो आप मानो मेरी आंखें भर गई कि बाबा अपना काम सब कुछ करता है। जैसे ही दादियां यहां आई, कोई बैंड बाजे वाले को मैंने कहा ये गीत चलाना दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, कि वो दादियां नाचती है, दादी जानकी जी इस गीत पे बहुत नाचते हैं। तो नीचे से बैंड बाजा ले आया, जैसे ना मुझे वो दिन भूलता नहीं है कि 12,000 का फटाका ले आया उधारा, और घोड़े वाले 15 घोड़े वाले नक्की से ले आया, भाई जैसे साई देता गया जो 12,000 से वो पूरे हो गए। मैं कहा एक बार काम होना चाहिए बाद में देखी जाएगी। तो सब काम वो तो अलग ही माहौल था, बाबा अपना काम करवा रहा था। तो जैसे दादियां फिर यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है ना, इसके आगे वो जगह बनाई गई थी, यहाँ उतर के हारमनी हॉल में प्रोग्राम हुआ, तो वो वंडरफुल दृश्य था। जब बहुत सब हो गया तो वहां किचन वहां अपने स्टोर में मैं बैठा था, जो भी आए इधर घोड़े वाला कहे भाई जी पैसे, उधर हाथी वाला कहे पैसे। अब मैंने कहा बाबा, अब मैं और बाबा के पास गए, बाबा थैंक्स थैंक्स तो सारे दे रहे हैं, ये अभी पैसे देने इनको। तो थोड़ी देर में वैस उधर बैठा स्टोर में तो एक बहन आई मॉरिशस की थी, कहती हरीश भाई क्या दिवाली थी, हाथी आप लाए थे। मैं कहा नहीं बाबा ने भेजा, सब भाई बहनों का सहयोग था। कहती क्या दिवाली थी। अब मैं बाबा को कहूं दिवाली दिवाली कर रहे हैं, ये लेने वाले तो बाहर खड़े हैं, तो इनका कोई इलाज करो ना। नहीं तो वो बहन कहती है हरीश भाई मेरी दिल है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं और गंभीर हो गया कि वो मांगने से मरना भला। मैं बाबा के पास गया, बाबा आप ही टच करो जो कुछ करना। तो उसने बैग से 32,000 रुपए निकाले, तो कहती है ये मेरा बाबा के लिए ये दिवाली के निमित्त सहयोग है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दीदी जी से बात करता हूँ, जहाँ दीदी होंगे तो फिर वैसा करेंगे। फिर मैं दीदी को फोन किया, दीदी जी कहाँ हो? दीदी बोले मैं पीस कॉटेज, अपने इधर दादी कॉटेज में। मैं कह एक बहन को सहयोग करना चाहती दिवाली के निमित्त, तो मैं लेके आता हूँ। तो मेरे पास ना अल्टो गाड़ी थी, वो उसमें मैं बिठा लिया। मैं कभी देसी बहन है, कभी लेट ना कर दे, इधर उधर ना बह खड़ी हो जावे। तो मैं कह भाई इसी दादी दी के पास ले गया। तो दीदी के पास ले गया, तो दीदी को उसने ये 32,000 रुपया दिया। दीदी ने टोली दिया, ब्लेसिंग दिया। मेरे को भी बड़ा दीदी ने प्यार से दृष्टि दिया, क्योंकि मेरे को तो ये था कि दीदी को एक ही मैंने कहा था, दीदी ठीक है आप ब्लेसिंग दे देना, पैसे तो बाबा पे ही करेगा, जब मीटिंग हुआ था। तो दीदी ने दृष्टि दिया, ब्लेसिंग दिया। जैसे बाबा कमरा रास्ते में है यहाँ, तो मैं बाबा कमरे में गया, बाबा को थैंक्स किया। मेरी आंखें बहुत भर गई कि बाबा सारा काम आप खुद ही कर लेते हो। फिर जैसे मैं गया अपने वहां ऑफिस में, वो स्टोर कम ऑफिस है, वहां बैठा एक भाई आया, कहता हरीश भाई क्या दिवाली थी, मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं तो उस दिन धरती पे ही नहीं था, उड़ रहा था, बाबा के जैसे गोद में ही था। तो उसने 51,000 रुपया निकाला, टेबल पे रखा। हरीश भाई ये दिवाली के निमित्त ये मेरा सहयोग है। मैं कह नहीं हो गया बाबा करण करावन आ रहे करा, नहीं नहीं ये हमारा दिवाली के निमित्त लगना चाहिए। मैंने गंभीर हो गया और मैं बाबा, मैंने कहा बाबा आप सब कुछ क्या करवा रहे। फिर मैंने दीदी को फोन किया, दीदी जी, दीदी बोले ठीक है कॉटेज में है, तो मैं कह एक भाई सहयोग करना चाहता है। मैं फिर दीदी के पास उनको लेके आया, 51,000 रुपया दीदी के हाथ में दिया, और वो टोली और ब्लेसिंग। तो दीदी फिर दृष्टि दे रही थी, तो मैंने बाबा कमरे में आया, बाबा कमरे, मेरे आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि बाबा आप सब कुछ कर रहे हो। फिर जैसे ही मैं फिर गया वहां, तो एक कलकत्ता की माता आ गई, हरीश भाई क्या दिवाली थी। मैंने कहती है जिस हाथी पे भगवान का रथ विराजमान हो और अष्ट रत्नों में आने वाली दादी जानकी बैठे हो, उस रथ का खर्च, उसका हाथी का खर्च मैं करूंगी। मां क्या वो तो हो गया। कहती नहीं कितना था? मैंने कहा दिया 13,000। उसने 13,000 और निकाला, तो मैं क्या बाबा के पास और पहुंच गया। मैं बाबा आज आप क्या करके छोड़ोगे। फिर दीदी के पास वो 13,000 रुपया वो दिया, तो फिर वे दीदी को कहा दीदी हाथी वाले को देना है, घोड़े वाले को देना है, फटाके वाले को। तो मेरा वो खुशी का पारावार नहीं रहा, और फिर वो दीदी से लेके जिन जिन को देना था वो सब पूरा किया। तो फिर वो दिन मैं ना कभी भूलता नहीं हूं कि बाबा ये सब काम कैसे करवा लेता है। फिर उसके बाद मेरे को आया, बाबा आप ये तो हाथी का था ना एक थोड़ा, बाबा ने कैसे करा, इसके पीछे सब बताऊंगा, लेकिन अपना क्लास कितने बजे तक है? 9:30 तक। हाँ जी ओके, फिर तो अच्छा है। तो उसके बाद फिर आता था भाई स्टोर में, तो सेवा जो है 2-4 घंटे की होती है, तो हम अपना भविष्य इतना ऊंचा बनावे जो समय है बाबा के कार्य में सफल हो। तो आता था कि बाबा आप इस धरती पे आए हैं, ये पूरा माउंट आबू सुंदर हो, सजा सजाया हो, जब आपने हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया, तो हमारे मंदिर बिरला टाटा बड़े बड़े जो धनवान हैं कितने सुंदर बनाते हैं और कितना खर्च करते हैं। तो मैंने कहा बाबा आपने हमें ऐसा बनाया, हमारे आज मंदिर भी लोग कितने सुंदर बनाते हैं, तो आप यहाँ आए हैं तो ये कितना सुंदर माउंट होना चाहिए। तो बाबा ये सेवा मेरी दिल है, मैं करूं। तो ऐसे करके संकल्प आते थे। तो एक दिन 20 जुलाई 2013 को राजस्थान हरित क्रांति के नाम से अभियान था, तो आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी ने मुझे उस मीटिंग में भेजा कि हरीश मीटिंग है आप जाओ। तो वहां कलेक्टर, एसडीएम और समाज सेवी संस्थाओं के बहुत थे, तो प्लांटेशन करना था। तो बस वहां मेरे को पूछा गया कि हरीश आप ज्ञान सरोवर की तरफ से कितने लगाओगे प्लांट? तो हमने कहा हम 500 लगाएंगे। बोला बस 500? लोग तो हजारों लगा रहे हैं। मैंने कहा हम जो कहते हैं ना मर के भी पूरा करते हैं, नहीं तो कहते नहीं है, हम प्रैक्टिकल करेंगे, लगा के भागेंगे नहीं। तो वो देखने लग गए कि ये ऐसा बंदा कौन है जो ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा वो तो समय बताएगा कौन कितना क्या करेगा। बैस जी हमारे पूरे ज्ञान स्वरूप के भाई उमंग उत्साह में यहाँ एक निर्मल वन पास में वहाँ झाड़ झनखाड़ निकाल के हमने प्लांट शुरू किए जी। वहाँ आदरणीय दादी जानकी जी गए, 400 ब्राह्मणों का वहाँ ब्रह्मा भोजन भी रखा वहाँ जंगल में, तो बड़ी रौनक। लेकिन वो इतनी सेवा हुआ कि फिर वहाँ के जैसे कलेक्टर, ये SDM, इधर समाज सेवी लोग, पार्षद सब देखने आते थे कि वहाँ बड़े फूल पौधे लगा दिए। तो बोले हरीश भाई आपकी संस्था तो कमाल करते हो, आप लोग जिधर भी जाते हो हरा भरा और सुंदर कर देते हो। तो बोले आप माउंट आबू में अपोलो ग्राउंड करो। हमने कहा क्यों नहीं। तो बुद्धि में आता था जब बाबा कहते भीड़ लगेंगी बच्चे तो सब पहाड़ियां भी भर जाएंगी, तो बुद्धि में आता था कि जितनी भी ये जगह खाली है इसको हम साफ सुथरा करके रखे ताकि जब बाबा के बच्चे इतने आएंगे तो अकोमोडेशन तो इतना होगा नहीं, कम से कम ये पार्क तो साफ सुथरे मिलेंगे बच्चों को। तो पहले पोलो ग्राउंड में आदरणीय दादी गुलजार जी ने पौधा लगाया, दादी जानकी जी सब बड़े गए, सब अपने जितने सीनियर बहन भाइयों ने एक एक प्लांट लगाया। तो बड़ा सुंदर वो दृश्य कि वो पहला शुरुआत वहां करा किया, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज गया कि संस्था वाले इन्वायरमेंट के ऊपर भी कितना अच्छा काम करते हैं। तो उसकी निमित्त मेरे को बना दिया कि आप करो, कुछ भी होता मैं दीदी जी के पूछे बिना कुछ भी नहीं करता हूँ, जैसे बाबा से पूछ लिया। फिर उसके बाद SDM साहब से बहुत स्नेह हो गया। फिर यहाँ ओला जी थे, बोले हरीश भाई पूरा नक्की को भी सजाओ। तो एक दिन जा रहा था बाबा की पहाड़ी के नीचे, क्यों गुजरात में शराब बंद है तो यहाँ आके दारू भी पीते हैं, बोतल भी फोड़ देते, तो सारा वातावरण इधर कई लोग खराब कर जाते थे। तो आता था कि कम से कम इधर हम अच्छा करेंगे तो ये लोग खराब तो नहीं करेंगे। तो बाबा की पहाड़ी पे इधर गया तो बोतलें शराब की बहुत कांच, और हमारे भाई बहन पांडव भवन से निकल वॉकिंग जाते तो आता था कि ये तो अच्छा होना चाहिए, बाबा का ये स्थान है, तीर्थ स्थान है। तो ऐसा समय आया कि SDM को बोला जी कि ये अच्छा होना चाहिए। बोला रीत जी आप जो भी सहयोग चाहिए हम करेंगे, आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा जी एक तो बोला ये काई जमी हुई है, मछली मर जाती है, बदबू आता है, क्या करें। अब मैं कोई इंजीनियर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, मैं तो देसी आदमी, बाबा का बच्चा भोला। तो मैंने भोलेनाथ को याद किया, मैं बाबा बुद्धि देव इनको, मैं क्या करूं, ये तो IAS IPS बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते हैं और इनको मैं क्या राय दूं। तो बाबा बोले बेटा आपसे बड़ा कौन होगा, आप जो कहोगे वही होगा। मैंने कहा जी ऐसा भ्राता जी, यहाँ रिसाइकलिंग एक फाउंटेन लग जाए तो मछलियां नहीं मरेंगी, काई नहीं जमेंगी और यहाँ संस्था का नाम हो जाए। बोला कौन करे, मैं आप छुट्टी दो संस्था करेंगी, मैं बात करूंगा बड़ों से। तो फिर मैं आदरणीय निर्वैर भाई जी से बात किया, भ्राता जी वहां एक फाउंटेन लगा देते हैं, संस्था का नाम होगा, नहीं तो होटल वाले कहते हैं हमारा नाम लिख दो हम करते हैं। तो मैंने कहा क्यों, इतना बड़ा बाबा का परिवार है तो हम करेंगे। वो 220 फुट ऊंचा वाटरफॉल बनाया नक्की झील पे और चारों तरफ बहुत सुंदर सजाया, एक झोपड़ी बनाया ऊपर छतरी, कोई भी आवे और झूले लगा दिए काफी, तो पूरे माउंट के जो भी सबके लिए, ऐसा नहीं कि अपने बाबा के बच्चों के लिए, सारे बाबा के बच्चे है दुनिया, तो सबके लिए वो सेवा हुआ। तो उससे प्रभावित होकर मेरे को 10 बार गवर्नमेंट ने सम्मानित किया, पेपरों में संस्था का काफी नाम आया। तो मेरे को और उमंग उत्साह आया कि बाबा और सजाना है घर को, और सजाना है। तो वो इतना सज गया कि लोग बहुत प्यार करने लग गए, इतना प्यार किया कि उसको देखते देखते एक कोई वहां कपल घूम रहा था, तो घूम रहा था तो उसने कहा कि ये किसने किया, बोले BK वालों ने। फिर वो आया यहाँ, ढूंढा उसने, फिर मेरे को बुलाया, एक मीटिंग किया। वो बोला कि मैं 1967 में ब्रह्मा बाबा से मिला हूँ और मैं ग्वालियर में क्लास करता था, मेरा 30 बीघा नीचे जमीन है और वो आप एक बार देखो। मैंने कहा मैं दीदी से पूछ के फिर ही जाऊंगा, मैं दीदी से बात किया, दीदी बोले भले। मैं कहा दीदी वो कहता खर्च में करूंगा, आप हमें गाइडलाइन दो, आप इतना सब अच्छा कर रहे हो। दीदी ने छुट्टी दिया, मैं गया जाके देखा। देखते ही बाबा को याद किया, वो तो जंगल था, झाड़ झंखाड़ थे। बस ऐसा प्लान दिया कि उसमें 3 महीना जेसीबी चलवाया, बड़ा सिस्टम से वो किया, रिंग रोड बना दिया, उसमें घिया लगा दिया, 600 पेड़ आम के लगा दिए, 30,000 गोभी लगा दिया, 23,000 टमाटर लगा दिया, और उसमें इतने फलों के पेड़ और वो सब फूल तक लगा दिए। अभी वहां कोई हमारे पिछले दिनों एक भाई ने शरीर छोड़ा, वहां से पूरा बोरी एक फूलों का भर लाए, एक पूरा ये गाड़ी मेरे पास है टाटा जेनोन, उस पीछे सब साग सब्जी फूल पौधे सब उसमें ले आता हूँ, वो पूरी भर के पूरी घिया की गाड़ी, एक पांडव भवन छोड़ के आया, एक यहाँ लाया, फिर भी टमाटर जो चीज होती है बाबा के घर। मैंने कहा बाबू जी क्या करना, कहते पहले बाबा के घर जाए। फिर वो आया यहाँ, अभी 3 दिन युगल ने कोर्स किया, दीदी से मिले, तो ये बाबा उस सेवा से देखा कि कहां से कहां कार्य करवा रहा है, तो वो सब हुआ। उसके बाद फिर ये दादी जानकी पार्क तो आप देख ही रहे हो, यहां भी बाहर एक शराब बेचता था, बीड़ी सिगरेट चाय का दुकान था, लेकिन उस शराब तक बेचने लग गया था, तो हम सब भाइयों को अच्छा नहीं लगता था कि ये यहाँ नहीं दरवाजे के आगे हो, गेस्ट आते हैं, इधर प्रोग्राम होता था तो वहां सब चीज वो रखता था नशे की, तो गलत लगता था। हम बड़े भाइयों को भी बोला कि ये जगह जो है ना अपनी लेनी चाहिए, घर के आगे है, तो सब बातें करते थे, लेकिन ये एग्रीकल्चर लैंड है तो मना कर देते थे, भाई नहीं इसका क्या करेंगे, अब तो सारा स्कोप नीचे हो गया। मैं एक बार आदरणीय रमेश शाह जी के पास कई बार गया, मेरे को तो फिर डांट भी खाना पड़ा, बोले तेरा कमीशन है क्या, तू बार बार आ जाता है, तो मैं फिर गंभीर हो जाता था कि बाबा तो देख रहा है, तो फिर मैं दीदी जी को बोलता था, दीदी जी कहते थे लेना तो चाहिए लेकिन अभी मीटिंग में बात रखेंगे, फिर जैसा होगा। फिर मीटिंग में भी ये बात हुआ किसी को दिला दो, फिर मैंने कहा दीदी कोई बाबा के बाबा पे कोई गरीब लोग हैं क्या कि आप खुद ले लेवे दूसरे को क्यों दिलावे। फिर दीदी ने कहा ठीक है आप ट्राई करो। फिर मैं अपने बाबा के बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा हरीश भाई ले ओ, ये जरूरी है तो घर के आगे है, तो बस ऐसे करके भाई बहनों ने सहयोग दिया तो ये जगह ली गई, क्योंकि हमारे आदरणीय भारती दीदी बैठे हैं, वे उधर निर्मल वन में इसी जगह की बात हुआ था, तो दीदी ने फिर आदरणीय रमेश शाह जी को भी बोला और अकाउंट भी वाला भाई भी साथ था उस दिन, तो हाँ जी तो दीदी बैठे हैं तो मुझे वो दिन याद आ गया, तो ये जगह फिर ली गई। ली गई तो फिर दीदी ने कहा कि ठीक है भाई करो इसमें कुछ करो। अच्छा रमेश शाह जी आए देखा तो बोला तो गड्ढा है यार, इस क्या करोगे, मैं भ्राता जी दिला दो इसको ठीक कर दे। तो बड़ा उमंग था, लेकिन फिर ड्रामा ऐसा हुआ कि ये लेने के बाद मेरी दिल थी कि मैं विदेश घूम के आऊं, देखा नहीं था विदेश। फिर 15 कंट्री गया, यहां से लंदन गया, तो लंदन गया वहीं दादी बैठे थे, तो दादी कहना मैं पांव दबा रहा था प्यार से, तो हमारे साथ हमारे सुभाष भाई भी और महावीर भाई भी थे, तो पांव दबा रहा था दादी के, तो उस टाइम संकल्प आया कि इस जगह का नाम दादी जानकी पार्क रखा जाए, तो बस वो संकल्प और आया यहाँ दीदी के पास, तो वो जहां भी क्लास कराते थे यूरो पाउंड डॉलर बहुत मिले थे उधर, जैसे होता है ना भाई मधुबन से भाई आए हैं तो कोई ना कोई कुछ देते थे, जब दीदी के पास लेके गया, दीदी ये सब भाई बहनों ने सहयोग भी दिया है और इस जगह का दादी जानकी पार्क नाम रख दो, तो दीदी ने कहा ठीक है, तो दीदी ने यस किया और बस ये दिन दुगनी रात चौगनी ये आप सबके सामने ये बनता ही जा रहा है, तो ये वंडर हो गया। तो वहां फिर दादी जी का वो प्यार जब इसका ओपनिंग हुआ, आदरणीय गुलजार दादी, दादी जानकी जी, दादी रतनमणि जी, सब सीनियर भाई बहने, आदरणीय मुन्नी बहन, इस पार्क में आदरणीय निर्वैर भाई जी ने प्लांट लगाया, आम का पेड़ बड़ा है, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने अंगूर की बेलें लगाई, ऐसे सब बड़े भाई बहनों के कदम यहाँ पड़े और ये प्लांट लगाए गए। तो ये आप सब देख रहे हैं कि ये जहां तो वो गंद कचरा शहर का लाके यहाँ डालते थे, आज इतने फूल पौधे और भाई बहनों को वो स्थान इतना खींचता है कि सब खुश होके जाते हैं। फिर जब इसका ओपनिंग हुआ तो दादी जी मतलब बहुत प्यार कर रहे थे, तो फिर मेरे को शर्म आता था, मैं नहीं आगे आ रहा था। फिर हंसा बहन ने कहा कि नहीं इधर आओ, मैं आया, दादी ने गले में हार डाला, ऐसे पकड़ा, गोद में ले लिया, और मैंने सोचा आगे पीछे तो ब्राह्मणी नजदीक नहीं लगने देती, आज तो मौका है। मैं भी आंख बंद करके दादी की गोद में ऐसे लेट गया। दादी ने फिर सिर पे हाथ, हे देवता देवता, इतना प्यार किया, वो दिन मैं भूलता नहीं। जैसे इतनी एनर्जी भर दी दादी ने कि जैसे कोई वंडर हो गया। फिर तो और कूदने लग गया मैं, तो फिर तो था कि पूरे माउंट को सजाना है। फिर वो पांडव भवन के पीछे नहीं गुलाब गार्डन, इधर 35 भाई समर्पित रहते हैं, तो वहां गया एक दिन, कुत्ता मरा पड़ा, लोग वहां गंदगी कर रहे हैं। मैं क्या, इधर बाबा दादियां बताती हैं कि बड़ के पेड़ के पास बाबा आके रुमाल हिलाते थे, विदाई देते थे जब जाते थे सेवा में। तो मैंने कहा बाबा यहाँ आते हो और यहाँ गंदगी हो, मैंने कहा हम बाबा अब इसको ठीक करेंगे। वैसे SDM साहब को लेके आया, मगर भ्राता जी चलो एक जगह और अच्छी करते हैं, तो यहाँ आप मिट्टी डलवा दो, हम प्लांट लगा देंगे। तो दादी जान की पार्क में बड़े बड़े गमलों में प्लांट हो जाते हैं, फिर वो लगाने पड़ते हैं, कहीं लगाएंगे तो सस्ता पड़ जाता है ना। फिर यहाँ क्रिसमस के पेड़ बड़े बड़े थे, तो मेरे को तो लगाने ही थे कहीं, नहीं तो गमले भी टूट रहे थे और जगह भी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मिट्टी डलवाई, वहां पूरे गुलाब लगाए, यहां से मैं गमले उठा के वहां सब बड़े भाई बहनों ने, पांडव भवन के भाइयों ने आके सब वो पौधे लगाए। तो आपने देखा पीछे इतना सुंदर बना दिया कि वो सब दुआएं देने लग गए। तो हमने कहा कि ये 10 लाख का खर्च संस्था की तरफ से हम करेंगे, मिट्टी आप डाल दो। अब मैं इधर गमले इतने तैयार थे कि 7 लाख के तो पौधे ही बन गए, तो वो सब वंडर खाने लग गए। तो वो इतना पौधों से सेवा हुआ कि वो भी कचरा सारा दूर हुआ, अच्छा नक्की भी साफ हो गया। भाई बहन जाते हैं तो खुश होते हैं, दूसरे सब देखते हैं कि ये किसने किया, वे ब्रह्मा कुमारी संस्था ने किया, सेवा हो रहा है। फिर वो जो 220 फुट ऊंचा वाटरफॉल है वहां लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी सौजन्य, तो सेवा होता है। फिर एक दिन क्या था, वो छतरी बनाना था, तो मैं उनका कबाड़ होता है ना जो नगर पालिका का, वो उठा के वो सारा कर रहा था। फिर ऊपर जब छतरी बनाना था तो अक्रैलिक सीट चाहिए थी, तो पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला अकाउंट में, तो बोले रीस हो तो अपनी जगह नहीं है, तो वो तो कैसे करेंगे आप पे बिल और ये। मैं कोई बात नहीं, मैं बाबा को बोला बाबा आप ही कुछ करो, आप ही कर सकते हो बिना बिल वाला काम, तो मैं क्या बाबा करो। तो आप मानो वंडरफुल के जैसे वहां एक बहन आई, कहती हरीश भाई क्या सजा दिया, मैं क्या बाबा ने सजाया, कहती मेरी दिल है मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं क्या भाई अब मैं क्या बोलूं कि क्या करो, वो सोचे कि मेरे ही भरोसे खड़ा था, नहीं तो मैं बाबा के पास गया, मैं बाबा आप ही करो कुछ। आप वंडर मानो कि जैसे बोली कितना खर्चा, मैं क्या 1,25,000 की आएंगी अक्रैलिक सीट, कहती हाँ मैं करती हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं उसी टाइम दीदी को फोन मिलाया, मैं क्या भाई अभी तुरंत दान माफ उन्हें। मैं दीदी को फोन किया, दीदी ने कहा ठीक है, मैं कहा दीदी 1,00,000 रुपया करना चाहते हैं कैसे करें, और इधर अक्रैलिक सीट लेना है नक्की पे। दीदी बोले ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के नाम से चेक दिया और अकाउंट में दिया। मैं कहा भाई अब तो दे दो, ये चेक आ गया। फिर वो लाए, वो आपने देखा ना नक्की झील पे तिरंगा वो बना हुआ है ना वो छतरी, तो वो फिर उससे वो लगा दिया। करते करते सारा बाबा अपने आप ही सारे काम कराता है। तो मैं तो इतना कि एक बार यहाँ ना एनवायरमेंट की कॉन्फ्रेंस थी तो वहां के डायरेक्टर आए हुए थे नैनीताल के यूनिवर्सिटी के, वो बोले आप लोग एनवायरमेंट पे ये कर रहे हो कॉन्फ्रेंस, तो आपका प्रैक्टिकल क्या कुछ किया है क्या। उन्होंने कहा इधर हमने 5,000 पेड़ लगाए हैं, हमारे हरीश भाई देखते हैं संभालते हैं, तो वो जी मेरे पास भेज दिया। तो आए बोले आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे क्या क्या किया। मैं गाड़ी में बिठाया, सारा दिखा के लाया, समझाया कैसे ये हुआ। फिर बोले कि आपको हम यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहते हैं, सारा खर्च करेंगे और आपको वहां लेक्चर देना है। अब मैंने सोचा लेक्चर देना है तो मैं गंभीर हो गया। फिर वो मैंने कहा जी परमिशन के बिना तो हम जाते नहीं। अब दीदी के पास गए, दीदी ने कहा हरीश जाया। मैं क्या जो आ गया दीदी। तो बैस जी चल दिया नैनीताल, अच्छा एक रूम मिल गया, अच्छा एक नौकर मिल गया। और वहां मैंने देखा भाई पहले खाने पीने का तो अरेंज हो तो जाऊंगा। फिर वह नैनीताल बहन को फोन किया, आश्रम है अपना, मगर अभी भोजन होगा तभी जाऊंगा ना वहां। फिर वहां भोजन कर लेता था और मेरे वहां लेक्चर होते थे। पहले दिन तो जैसे पेड़ों का लेक्चर, भाई पेड़ को कैसे पालना, इसकी भी काफी विधि है। ऐसा नहीं है कि पेड़ हो जाते हैं, उनकी संभाल चाहिए, तो वो सारा बाबा ने सिखाई दिया था। फिर दूसरे दिन सोचा, दूसरे लेक्चर पे मैंने कहा इतने भारत की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आए हुए हैं, तो मैं कहा बाबा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, ना इंग्लिश आती, ये सारे इंग्लिश में मेरे से बात करते, मेरे समझ आ नहीं रही कुछ, तो आप ही कुछ करो। मैं बस यस यस करता था तो मैं तो फिर मैं बाबा को बोला बाबा अभी इनको पेड़ तो और भी लगाने वाली बातें बताएंगे, इनका जो कल्याण करना है वो तो आत्मा के ज्ञान से होगा ना, तो मैं क्या ये टॉपिक मैं कैसे करूं। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने उन सब प्रोफेसरों को पूछा कि भाई हम सब एनवायरमेंट के ऊपर पूरे भारत के कोने कोने से आए हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे वो कहने लगे कि उन सब से पूछा कि भाई आप सब प्रोफेसर हो, एनवायरमेंट के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, आप ये तो बताओ कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। तो एक ने भी नहीं बताया कि आत्मा भरकुटी में है। मैंने कहा जब अपना ही पता नहीं है तो हम एनवायरमेंट क्या ठीक करेंगे। फिर वहां उनको बाबा का ज्ञान दिया और इतना कि वो तो पूरा कोरस ही दूसरे लेक्चरों में बोले जी हमें यही सुनाओ। तो जी फिर कोई मेरे साथ सेल्फी लेवे, कोई कुछ करे, मेरे फिर फोन नंबर लेवे। तो मैं तब बाबा को एक ही कहा बाबा देखो आप ही जो कुछ कर सकते हो करो, हम तो बस आ जाते हैं भोले भाले हैं। फिर मैंने तो देखो फिर दीदी को आके उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया, सम्मानित किया, फिर वो 3,000 रुपए एक लेक्चर का भी दिया। तो ऐसे करके एक एक लेक्चर का 3,000 मैं दीदी को आके सुनाया, वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। फिर दीदी ने कहा तू क्लास में सुना, यहाँ क्लास में सुनाया कि भाई देखो आज मैं प्रोफेसरों को पढ़ा के आया हूँ। और मैंने कहा मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं देखो 7वीं में मैं फेल हुआ, 8वीं में 2 बार फेल हुआ, 9th में पास हुआ, 10वीं मैंने की नहीं, तो मेरी ये पढ़ाई है मेरी, लेकिन ये सारा काम किसका है, ये बाबा का है। अच्छा फिर यहाँ भी बड़े बड़े काम बाबा करवा रहा है। तो उसके पीछे सिर्फ 4 बातें हैं, 2 मिनट और लगेंगे बता दूं, क्योंकि फिर आगे फिर कभी टाइम मिलेगा तो सुनाऊंगा कहानियां। तो उसके बाद देखो इतना सब कुछ आपने देखा ना, बड़े बड़े काम बाबा करवा रहा है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ 4 बातें मैंने अपने जीवन में अंडरलाइन की हुई है, वो आपके भी काम आएंगी, क्योंकि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही करेंगे, हम सब बाबा के बच्चों को, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत कुछ करना है, तो बाबा मदद करता है। तो देखो मैंने 4 बातें ये अंडरलाइन की अपनी लाइफ में कि बाबा ने हम सबको वरदान दिया हुआ है कि हर ब्राह्मण बच्चे को पहला वरदान तो ये दिया कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो तो बाप की 1,000 गुना मदद मिलेंगी, या सिर्फ हमें ही बोला बाबा ने, सबको बोला है ना। और तीसरा बाबा ने कहा बच्चे ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इसमें कुछ भी है कल्याण हमारा हो ही नहीं सकता। और चौथा जो बहुत जरूरी है वो भी जिम्मेवारी बाबा ने ले ली कि बच्चे दाल फुल्का तो मैं अपने बच्चों को लास्ट तक दूंगा, कहा के नहीं, बल्कि सब्जी सस्ती है दाल महंगी है, तो ऐसे पालना लास्ट जन्म भी बाबा कर रहा है। तो जब ये चार बातें मैंने अपनी लाइफ में अंडरलाइन करके रखी हुई है, इससे क्या है, आप कुछ भी करो बाबा है ना साथ, तो बाबा साथ है तो फिर बड़े बड़े काम क्या, हिमालय जैसा पहाड़ भी राई हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा जब ये था कि एक बार सबने कहा, बड़ी बहनें आई हुई थी विदेश की, बोले कि किसी को कुछ कहना है क्या, तो हमने कहा कि यहाँ एक बड़ी बहन चाहिए, ऐसे बोला। थोड़े दिन में हमारे आदरणीय दीदी निर्मला दीदी आ गए, तो वो भी बाबा ने 25,000 में से उठा के, आपको याद है, बुला के बाबा ने सिर पे हाथ रखा। तो तब मेरे को एकदम, मैं कोई कवि नहीं कुछ नहीं, मेरे को आया कि जैसे बाबा ने हाथ रखा ना, तो मैं दीदी को सुनाया, यहां मां दीदी जी आपके सिर पे खुदा का हाथ है, दीदी जी आपके सिर पे खुदा का हाथ है, आपके सिर पे देख खुदा का हाथ, सागर भी घबरा गया, बाप दादा ने आपको इतना किया प्यार जो हिमालय भी शर्मा गया, हिमालय भी शर्मा गया। ज्ञान सरोवर वालों को सदियों की याद आई, ज्ञान सरोवर वालों को सदियों की याद आई, देश विदेश की करके सेवा, माँ बच्चों के पास आई, माँ बच्चों के पास आई। तो ऐसे हमारी आदरणीय दीदी जी है, और ज्ञान सरोवर वाले इतने लाडले हैं कि पहले दादी चंद्रमणि जी ने सेवा की पालना दी, फिर मनोहर दादी जी ने, अब आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी ने। तो इसलिए होली हंसराज बाबा ने क्या कहा, जो चुल पे सो दिल पे, ये ऐसे ज्ञान सरोवर के होली हंस बाबा के अनन्य रतन हैं, जो हम सब मिलके बाबा की सेवा में, बाबा को प्रत्यक्ष करने में सब लगे हुए हैं। तो अब टाइम हो गया, फिर जब कभी मौका मिलेगा। ओम शांति जी।